थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यहेजकेल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है महिमा का दर्शन और अशुद्धता के कारण मंदिर का नष्ट होना। ये इस अध्याय का परिचय है जिसे हमने पिछले अध्याय में भी देखा था, लेकिन हम चाहेंगे कि हम इसे सुने ताकि इसके द्वारा से हमें अध्ययन में सहायता मिल सके। अब हम यहेजकेल की भविष्यवाणी के दूसरे मुख्य भाग में आते हैं। इस भाग में यरूशलेम और संपूर्ण देश का बंदी बनाया जाना साकार होगा। यरूशलेम के मंदिर से परमेश्वर की महिमा चली जाएगी। आइए अब हम देखें महिमा का दर्शन। अध्याय 8 में यहेजकेल को परमेश्वर की महिमा का एक और दर्शन प्राप्त होता है। इस दर्शन में उसे यरूशलेम ले जाया जाता है जहां मंदिर में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। यहां एक प्रश्न उठता है, क्या यहेजकेल वास्तव में यरूशलेम ले जाया गया था? मैं अपना विचार व्यक्त करता हूं, परंतु इस विषय में आप सिद्धांत स्थापित नहीं कर सकते हैं। इस प्रश्न का एक उत्तर है कि यहेजकेल ने कबार नदी के तट पर एक दर्शन देखा। दूसरा उत्तर है कि यहेजकेल ने स्वयं यरूशलेम जाकर यह सब देखा और लिखा। मैं इन दोनों उत्तरों से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार में यहेजकेल का अनुभव प्रेरित पौलुस और यहुना के अनुभवों के समान था। दूसरा क्रंथियों की पत्री 12 अध्याय उसके 1-3 पद में पौलुस लिखता है कि वह तीसरे स्वर्ग में उठाया गया था। मेरे विचार में यह उस समय की घटना है जब उसे गलातिया प्रदेश के लुस्त्रा नगर में पत्थरवाह किया गया था और मृतक समझकर छोड़ दिया गया था। वह मर चुका था और प्रभु यीशु ने उसे नया जीवन दिया था। इस समय वह तीसरे स्वर्ग में उठाया गया था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय में यूहन्ना कहता है कि वह स्वर्ग में उठाया गया था। इसमें यूहन्ना वैसे ही उठाया गया था जैसे कलीसिया प्रभु के साथ भेंट करने के लिए उठाई जाएगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2-3 में बार बार कलीसिया शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु अध्याय 4 के बाद कलीसिया शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। उसे मसीह की दुल्हन कहा गया है। जी हां, यह वह कलीसिया है जो स्वर्ग में उठा ली गई है, पृथ्वी पर रहने वाली कलीसिया नहीं है। अतः यूहन्ना का स्वर्ग में उठाया जाना कलीसिया के उठाए जाने जैसा ही है। मेरे मित्रों, यहेजकेल भी पौलुस और यूहन्ना के समान उठाया गया था, परंतु मेरे विचार में यरूशलेम और आसपास के निवासी उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ थे। यह प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, अतः मैं आपको प्राकृतिक व्याख्या नहीं दे सकता। परमेश्वर ने उसे उठाया और जो हुआ वह अलौकिक घटना थी। मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ें और यहेजकेल की पुस्तक उसके 8 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ें। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर छठवें वर्ष के छठवें महीने के पांचवें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई। यहेजकेल प्राचीनों में उपस्थित है और मेरे विचार में वह जन समूह निराशा से भरा है। तब हम आगे पढ़ते हैं यहेजकेल 8 अध्याय उसके 2 पद में, तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है, उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। यह अध्याय 1 में दिए गए यहेजकेल के दर्शन के सदृश्य है। परमेश्वर की महिमा का वह महान दर्शन यहेजकेल के पुस्तक के प्रत्येक दर्शन का आधार है और मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का आधार भी है। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 8 उसके 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं, उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े, तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था जिसके कारण द्वेष उपजता है। फिर वहां इसराइल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा था। लिखा है उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर, परमेश्वर का वह आत्मा है, उसके पास मेरे जैसे हाथ नहीं है। धर्मशास्त्र जब कहता है कि आकाश मंडल उसकी हस्तकला का वर्णन करता है तो वह मेरी समझ के लिए है, क्योंकि मेरे विचार में बिना हाथों के काम नहीं किया जा सकता है। धर्मशास्त्र हमारी सीमित भाषा के द्वारा हमें अनंत काल की बातें समझाता है, अर्थात अनंत बातें जो हमारे समझ से परे हैं उसे समझाता है। लिखा है मेरे सिर के बाल पकड़े। आपको स्मरण होगा कि यहेजकेल गंजा हो गया था, उसने सिर के बाल मुंडवा लिए थे, परंतु वह एक वर्ष पुरानी बात है। अब उसके बाल फिर से बढ़ गए थे, परमेश्वर ने उसके बाल पकड़े, तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर पहुंचा दिया। परमेश्वर का आत्मा उसे उठाकर यरूशलेम ले आया था, उसका शरीर भी साथ था या नहीं इस पर हम विवाद नहीं करेंगे, परंतु मेरे विचार में वह सदेह वहां लाया गया था। यहेजकेल का यरूशलेम लाया जाना धर्मशास्त्र की अनहोनी बात नहीं है। जी हाँ, दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 2 में एलिय्याह और प्रेरितों के काम अध्याय 8 और उसके 39 पद में फिलिप्पुस भी इसी प्रकार उठाए गए थे। जब वे जल से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने फिर उसे ना देखा। फिलिप्पुस सदेह उठा लिया गया था और इसी प्रकार एलिय्याह और यहेजकेल भी उठा लिए गए थे। आगे हम देखते हैं कि आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उठने वाली प्रतिमा का स्थान था जिसके कारण द्वेष उपजता है। मेरे प्रियो, यह प्रतिमा मेरे विचार में मनुष्य द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे दूसरे राजाओं के पुस्तक 21 अध्याय, दूसरे इतिहास की पुस्तक 33 अध्याय में हम देखते हैं, जो घृणित एवं निंदा का पात्र थी। यह प्रतिमा शायद किसी कोने में पड़ी थी और अब उन लोगों ने उसे फिर से सजाकर उसकी पूजा अर्चना आरंभ कर दी थी। वे परमेश्वर की ओर फिरने को तैयार नहीं थे। अध्याय 8 से 10 में हम देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा मंदिर से और इसराइल देश से प्रस्थान कर रही है। मेरे विचार में महिमा मनुष्य के राज्य काल में ही प्रस्थान कर चुकी थी और यहेजकेल को उसी का दर्शन प्रदान किया गया। अधिकांश विचारकों के अनुसार महिमा का प्रस्थान बंधुआई के समय हुआ था, परंतु मेरे विचार इससे भिन्न है। यदि मनुष्य की परम दुष्टता के समय परमेश्वर की महिमा इसराइल से नहीं गई तो इसराइल के इतिहास में अन्य कोई युग नहीं दिखता है कि उसकी महिमा वहां से उठे। जी हाँ, यहां महिमा कुछ नहीं कर रही है। उनके ईश्वर त्याग के कारण महिमा मंदिर से निकलकर नगर की पूर्व दिशा में ठहर गई थी। अध्याय 10 में हम महिमा का पूर्ण प्रस्थान को देखेंगे। मेरे प्रियो, मेरे विचार में मनुष्य के राज्य से आगे महिमा की मंदिर में उपस्थित होने का कोई भी प्रमाण नहीं है। यहेजकेल को यह दर्शन दिया गया कि परमेश्वर की दया प्रकट हो। वह उनका त्याग नहीं करना चाहता था। वह प्रतीक्षारत था कि वे मन फिराएं और उसके पास आ जाएं, कि वह उनका उद्धार करे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला है। वह धर्मी और प्रेमी परमेश्वर भी है जो जगत में बुराई को नहीं देख सकता है। वह अपने से विपरीत बात को रहने नहीं देगा। परमेश्वर हमारी धार्मिकता और सिद्धता के आधार पर हमारा उद्धार नहीं करता है। जी हाँ, हमारे पास तो उसे देखने को कुछ भी नहीं है। दूसरे तरीके से हम ये कहें कि हमारे पास उसे देने के लिए भी कुछ नहीं है, और वह धार्मिकता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करता है। अतः उसे मनुष्य के लिए मुक्ति की व्यवस्था करना अवश्य था। हमें प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा उसके पास आना होता है। यदि नहीं तो हमारा पुराना स्वभाव परमेश्वर का विद्रोही है, और परमेश्वर विद्रोह को पनपने नहीं देगा। यह वैसा ही है जैसे एक पुलिसकर्मी अपराधी को घर में नहीं छिपाता है। मेरे मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे अशुद्धता के कारण मंदिर का नष्ट होना। यहेजकेल के पुस्तक 8 अध्याय के 5 पद में हम पढ़ते हैं, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। अतः मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान ही में वह डाह उपजाने वाली प्रतिमा है। ध्यान दें, मंदिर अशुद्ध हो गया था क्योंकि वे जीवित एवं सच्चे परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे। उन्होंने 10 आज्ञाओं में से पहली 2 आज्ञाएं तोड़ दी थी। यहेजकेल 8 अध्याय उसके 7-9 पद में लिखा हुआ है, तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, दीवार को फोड़। इसलिए मैंने दीवार को फोड़ कर क्या देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। यदि यहेजकेल आत्मा में वहां होता तो वह उस छेद में से कैसे पार होता? आत्मा दीवार को कैसे तोड़ती? उसे तो दीवार तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। अतः वह सहधे वहां पर था और दीवार तोड़कर तहखाने में गया, और उसने वहां क्या देखा? आइए हम पढ़ें यहेजकेल के पुस्तक 8 अध्याय उसका 10 पद। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इसराइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। मेरे प्रियो, वे सृजनहार की अपेक्षा सृजित प्राणियों की उपासना कर रहे थे। ऐसा घृणित काम मनुष्य तब ही करता है जब वह जीवित एवं सच्चे परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता है, या दूसरे शब्दों में कहें, जब वह जीवित परमेश्वर को नहीं जानता है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी मनुष्य कर रहा था। निर्गमन के समय वे मिस्र में ऐसा ही करते थे। वे पशुओं की उपासना करते थे, और यही कारण था कि मिस्र पर आने वाली विपत्तियां उनके देवताओं पर लक्षित थी। रोमियों की पत्री 1 अध्याय उसके 21 और 25 पद में लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। मेरे मित्रों, इससे स्पष्ट होता है कि इसराइल पड़ोसी अन्य जातियों के स्तर पर आ गया था और जीवित परमेश्वर का गवाह नहीं रहा। इस कारण परमेश्वर मंदिर को ही नष्ट कर देगा। यहेजकेल के पुस्तक 8 अध्याय उसके 11 और 12 पद में हम पढ़ते हैं, इसराइल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष जिनके बीच में शापान का पुत्र यजन्याह भी है, वे उन चित्रों के सामने खड़े हैं और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए है और धूप के धुएं के बादल की सुगंध उठ रही है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इसराइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्काशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। मेरे मित्रों, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। उनके विचार में परमेश्वर उन्हें नहीं देखता है। आज जो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, वे वास्तव में कहना चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें नहीं देखता है। हम उसके समक्ष लेखादाई नहीं है, हम उसके किसी बात में ऋणी नहीं है, अतः हम जैसा चाहें वैसा करेंगे। इसराइल का भी ठीक यही विचार था। वे छिपकर प्रतिमा पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे, मंदिर में उनका एक गुप्त स्थान था। आज मेरे मित्रों, विश्वासी की देह परमेश्वर का मंदिर है। क्या वह आपके मन मस्तिष्क में भी जो होता है नहीं जानता? उसे देखकर क्या वह प्रसन्न होता है? यहेजकेल के पुस्तक 8 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे और भी अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तम्मूज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। मेरे प्रियो, वहां स्त्रियां बैठी हुई तम्मूज के लिए रो रही थी। तम्मूज बसंत का देवता था। वह पतझड़ और ठंड में मर जाता था और अधोलोक में चला जाता था। ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर वह फिर से जी उठता था। उसकी पूजा फिनेके से लेकर यूनान तक पहुंच गई थी, जहां उसे अदोनिस कहते थे और बेबीलोन में दुमुजी कहते थे। अतः ये स्त्रियां उसकी मृत्यु पर विलाप कर रही थी। यह प्रकृति की उपासना है। इसके साथ ही कुछ अनैतिक अभ्यास भी जुड़े हुए थे। हम आगे पढ़ते हैं यहेजकेल 8 अध्याय के 16 पद में, तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतर आंगन में ले गया और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। सबसे बड़ा घृणित कार्य था कि वे सूर्य की पूजा कर रहे थे। वे वेदी के समक्ष उसकी पूजा करते थे और परमेश्वर की नहीं करते थे। इससे अधिक उनका पतन और क्या हो सकता था? यहेजकेल 8 अध्याय के 17 पद में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहां करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहां आकर मुझे वे रिस दिलाते हैं, वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। पूर्व काल के यहूदी टीकाकारों का कहना है कि यह घृणित एवं पतित धार्मिक अनुष्ठान का प्रतीक था। आज की तुलना में यह नाक छिदाना है। वे परमेश्वर के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। अब परमेश्वर अपना क्रोध उन पर प्रकट करता है। यहेजकेल 8 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है, इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा, ना मैं दया करूंगा और ना मैं कोमलता करूंगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारें तो भी मैं उनकी बात ना सुनूंगा। मेरे मित्रों, इसराइल रेखा पार कर चुका था। वे इससे अधिक नीचे नहीं गिर सकते थे। अब परमेश्वर उन्हें दंड देगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपका उद्धार करेगा, परंतु तब जब आप उस पर विश्वास करके उसके पास आएंगे और प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करेंगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर पवित्र और धर्मी है, अतः वह दंड भी देता है और पछताता नहीं है। हम पौलुस के साथ कह सकते हैं, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। परमेश्वर हर काम में सही है। यदि वह दंड देता है तो भी वह सही है। इस पीढ़ी को यदि यह प्रकाशन प्राप्त हो कि वह गलत है और परमेश्वर सही है, तो वह एक महान बात होगी। परमेश्वर पाप का दंड अवश्य देता है। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि यहेजकेल को परमेश्वर का आत्मा यरूशलेम के मंदिर में ले गया है और उसे वहां का जो दृश्य दिखाया जा रहा है वह हृदय विदारक था, क्योंकि पुरुष सृजित प्राणियों की उपासना कर रहे थे और स्त्रियां तमूज की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। उन्होंने ठीक वेदी के सामने मंदिर में सूर्य की उपासना आरंभ कर दी थी, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वे मंदिर को अशुद्ध कर दिए थे और अब परमेश्वर उनको नष्ट कर देगा। यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 9 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है शकीना महिमा मंदिर से प्रस्थान की तैयारी में है, शकीना महिमा का पवित्र स्थान को भरना, शकीना महिमा का प्रस्थान। तो आइए हम देखें शकीना महिमा मंदिर से प्रस्थान की तैयारी में। मेरे मित्रों, अध्याय 9 में शकीना महिमा यरूशलेम के मंदिर से प्रस्थान की तैयारी करती है। मेरे विचार में मनश्शे के समय से शकीना का आना जाना लगा हुआ था। परमेश्वर दयावान है, वह शीघ्र ही क्रोधित होकर मनुष्य को छोड़ नहीं देता है। परमेश्वर धीरजवंत है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। तो आइए आप मेरे साथ पढ़िए यहेजकेल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1-3 पद, लिखा हुआ है, फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर और ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था, और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। तब इसराइल के परमेश्वर का तेज करुबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवड़ी पर उठ आया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा। शव पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से आए। ये 6 पुरुष स्वर्गदूत थे। इसके अतिरिक्त इसकी दूसरी व्याख्या नहीं है। जी हाँ, संसार को दंड देने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को काम में लेता है। वे इसराइल से संबंधित हैं और कलिसिया से उन्हें अभिप्राय नहीं है। पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा आया था, स्वर्गदूत नहीं। जिस दिन प्रभु यीशु कलिसिया को लेने आएगा, उस दिन उसके साथ स्वर्गदूत नहीं होंगे, परंतु जब वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा, तब वह अपने स्वर्गदूतों को आगे भेजेगा, जिसे हम मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय उसके 41 पद में भी पढ़ते हैं। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों और सब कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। फिर मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 27 पद में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा में आएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पौलुस लिखता है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 3 के बाद कलीसिया का उल्लेख नहीं है, जो अब तक बार बार किया गया है। क्यों? क्योंकि कलीसिया पृथ्वी पर से उठा ली गई है और स्वर्गदूत ने पृथ्वी को दंड देने के लिए अपना काम आरंभ कर दिया है। हमने आगे पढ़ा, तब इसराइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से जिनके ऊपर वह रहा करता था भवन की डेवड़ी पर उठ आया था, अर्थात वह परम पवित्र स्थान से चला गया। करूब दया के आसन के ऊपर थे, उन पर महिमा वास करती थी, महिमा परमेश्वर की उपस्थिति का बोध करवाती थी, परंतु अब वह वहां से उठ गई थी। यहेजकेल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, और यहोवा ने उससे कहा, इससे यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने कहा कि इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उनमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर उस नगर में सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, यह क्या ही भयावह दृश्य है कि परमेश्वर अपने लोगों को नाश कर रहा है और उसकी महिमा लोगों के बीच से उठ रही है। आज हम अपने जीवन में जांच करके देखें कि क्या हम भी नाश होने की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं, कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं, कोई नहीं समझता, कोई नहीं। समझता नहीं एक भी नहीं। रब को जो चाहता हो नहीं एक भी नहीं। करता हो जो